لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آج بھی ایک مریض کے لیے التماس کی گئی ہے، اور چونکہ مجلس کے آخر میں مجھے خود نہیں معلوم ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس بہت لیندھی ہو جائے، دعا کا وقت نہ ملے، تو ہم یہ شروع میں ہی یہ دعا کر لیتے ہیں، یعنی وہی آیہ کریمہ پانچ مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خداوند اس آیہ کریمہ کا واسطہ اور محمد والے محمد کا واسطہ، خاص یہ بیمار جن کے لیے ریکویسٹ کی گئی، اور دیگر تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. عشرہ زینبیہ 1437 ہجرہ، آخری آخری مجالس ہیں، اور جتنی باتیں بھی یا انکمپلیٹ ہیں یا اس کے بارے میں میرا وعدہ تھا کہ بعد کی مجالس میں آئیں گی، وہ انہی تین مجلسوں میں آپ تک پہنچانا. مگر آج ابھی تک 3 گھنٹے باقی ہیں، ابھی تک 30 نومبر کی ڈیٹ ہے. آج کا دن کمپیوٹر سیکیورٹی ڈے کے نام سے ساری دنیا میں منایا جاتا، ایک اسپیشل ڈے ہے. لیپ ٹاپ، ڈیسک کمپیوٹر، اسمارٹ فون، آئی فون، آئی پیڈ، یہ جتنی بھی چیزیں، ان کے استعمال کرنے والے کو معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی وائرس نہ آنے پائے، آپ کی قیمتی قیمتی فائلیں ضائع نہ ہونے پائیں، آپ کے بہت سارے ریکارڈ دوسروں کے ہاتھ میں نہ لگنے پائیں. اور آج 30 نومبر دنیا بھر میں، مجھے یہاں کا نہیں معلوم کہ افریقہ میں یا دارالسلام میں یا تنزانیہ میں، یہ دن کو واقعا کوئی اہمیت دی جاتی ہے کہ نہیں، لیکن باقی ساری دنیا میں یہ 30 نومبر کی تاریخ بہت اہم ہے. مگر یاد رکھیے، اب دن ختم ہو رہا ہے، 3 گھنٹے کے بعد 1 دسمبر شروع ہو جائے گی، تو آج سارا دن دنیا میں جہاں جہاں یہ کمپیوٹر کی سیکیورٹی اور وائرس اور اینٹی وائرس اور فائر وال اور جتنی چیزیں کی گئیں، وہ ہے اپنے دنیاوی انفارمیشن کو بچانے کے لیے. مگر 1400 سال پہلے اسلام نے کہہ دیا تھا کہ یہ دنیاوی سیکیورٹی سے زیادہ اہم چیز ہے اپنے ایمان کو بچانا. اس کے لیے ابھی ہمیں کوئی اینٹی وائرس پروگرام انسٹال کرنا ہوگا. آج سارا دن दुनिया के जिस इलाके को भी मैंने विजिट किया कंप्यूटर पर बैठे बैठे, बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल किया है कि नहीं, और जिसे इंस्टॉल किया है उसे अपडेट करते रहते हैं कि नहीं, और रोजाना अपनी तमाम फाइल्स को स्कैन करते हैं कि नहीं। जो पांच बातें आज बहुत ज्यादा रिपीट हुई हैं उनमें तीन बातें ये, भाई कंप्यूटर बिगड़ गया, वायरस आ गया, आपकी मालूमात किसी ने हैक कर ली, आपकी फाइलें किसी के पास चली गई, आपका पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो गया। मगर ये इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि अगर ईमान में कोई वायरस दाखिल हो गया और वो आपके ईमान का खात्मा कर गया तो वो एक ऐसा लॉस होगा जिसे दोबारा आप रिकवर नहीं कर सकते। और यही वो मैसेज है जो कुरान करीम और अहादीस नबवी बार बार दिया गया, ये कंप्यूटर वंप्यूटर वायरस हैकिंग ये तो सब आज की चीजें, ईमान का वायरस 1400 साल पहले ये बताया गया, जो मैंने एक दो मजलिसों में अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, ये वो हैकर है। आज की दुनिया में आप जिसे हैकर कहते हैं कुरान ने कहा वो शैतान तुम्हारे ईमान को खत्म करना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, लूटना चाहता है, हर वक्त उसके बारे में अलर्ट बैठना। ये अपना एक छोटा सा कंप्यूटर तुम्हें उसकी तो इतनी ज्यादा फिक्र है, और होना भी चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन ईमान उसके बारे में कभी तुमने सोचा है कि नहीं कि वहां कोई फायरवॉल लगाई है कि नहीं, वहां कोई एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल किया है कि नहीं, वहां पे उसको अपडेट भी करते रहते हो कि नहीं। चुनांचे कुरान करीम की ये आयत जिसे आज मैंने तिलावत किया, सूरह आले इमरान की आयत तो है मगर इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि शहजादी फातिमा ने अपने मशहूर खुतबे में इस आयत को तिलावत किया था। और यानी अब वो खुतबाए फातिमा पर शहजादी की वफात की मजलिसों में बहुत ज्यादा आजकल डिटेल गुफ्तगू की जाती है, मगर शहजादी के इस खुतबे में यही बताया जा रहा था, यह आयत शहजादी ने अपने खुतबे में कहां तिलावत की, पार्ट वन कंप्लीट हुआ, पार्ट टू शुरू हो रहा। पार्ट वन यह है कि जिसमें अपने बाबा की नबूवत का और रसूलुल्लाह की जो एफर्ट्स हैं उनका तस्कीरा किया, दुनिया में आया, किस तरह तुम्हें शिर्क से बचाया, नमाज वाजिब की और शराब हराम की, पूरा दीन। और उसके बाद फिर शहजादी अपने हक की जानिब चली, पार्ट वन पार्ट टू बीच में ही आयत तिलावत की, यानी यह बताया कि मेरे बाबा ने तुम्हें पूरा दीन दिया, तुमने अपने दीन को बचाया नहीं, उसमें वायरस एंटर हो गया, जिसका नतीजा यह निकला कि उसी रसूल की बेटी पे तुम लोग जुल्म कर रहे। वो आयत की तिलावत अगर आपके पास आज टाइम हो या अरबईन को आप अपना जॉब और ऑफिस वगैरह में ना जाएं या टाइम मिल जाए तो जाके वो खुतबा देख लीजिएगा कि यह आयत कहां पे तिलावत हुई, ठीक उसी जगह पे आई आयत जहां पे कंप्यूटर का वायरस आता, तो पूरा इस्लाम तुम तक आया, इसके बाद क्या हुआ, फिर तुम कैसे बदल गए, कैसे रसूल की अपनी फैमिली के अहलुल बैत के खिलाफ हो गए। मगर पहले आयत तिलावत की, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, खुदावंदा एक बार जब हमको हिदायत मिल गई, हम मोमिन बन गए, अब दोबारा हम गुमराही की जानिब न जाने पाए। यह है ईमान का वायरस, हिदायत मिल गई, आपने लेटेस्ट किस्म के प्रोग्राम्स इंस्टॉल करके कंप्यूटर खरीद लिया, लेकिन एक कमबख्त वायरस आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देगा। ईमान आपके पास मिल गया, इससे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज दुनिया में क्या, मगर जितना ईमान की वैल्यू, भाई किसी चीज की वैल्यू का अंदाजा होता है कि आजकल उसकी क्या प्राइस चल रही, उससे अंदाजा होता है कि चीज की कितनी क्या कीमत। जिस इस्लाम और ईमान के लिए हुसैन अपना गला कटाएं, असगर को कुर्बान करें, अकबर के कलेजे में बर्छी देखें, जैनब की चादर कुर्बान करें, सकीना के रुखसार पे तमाचे हो, सज्जाद की कमर पे कोड़े पड़े, वो इस्लाम कितना अहम होगा। मगर क्या यह समझ लिया हमने कि एक बार ईमान मिल गया आप मरते दम तक रहेगा? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, यह आयत बता रही है कि ऐसा नहीं। ईमान पे भी अटैक होता है, ईमान की भी हैकिंग होती है, जो कुरान ने कई जगह पे ये लफ्ज इस्तेमाल किया, तुम्हारे सारे आमाल खत्म हो जाएंगे। वह अंतुम ला तश अरुण, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे कंप्यूटर में हमारी फाइलें जो हैं करप्ट हो जाती हैं। जब जरूरत पड़ती है तो पता चलता है कि कितने बड़े प्रॉब्लम में आ गए। तो आज कंप्यूटर सिक्योरिटी डे की वजह से जो मेरा मौजू चल रहा है उसी को आगे बढ़ाऊंगा, उससे हटा नहीं। एक बार इस मैसेज पे जरा गौर कीजिए। और फिर अभी तक दारुसलाम में दुआओं का शौक और रवाज है। ये जुमला जो मेरी शुरू की एक दो मजलिसों में आ गया कि अभी ड्राइंग टीचर के कहने पे ब्लैंक पेपर हम नहीं देखते हैं, उसको देते हैं कि घास भी खत्म और गाय भी खत्म, अभी दुआओं का रवाज है। अल्लाह करे कि ये रवाज रहे, वो दिन ना आने पाए कि आपकी मस्जिदों और इमामबाड़ों से दुआएं कुमैल बंद हो जाए क्योंकि जईफ है, जियारत के आशूरा खत्म हो जाए क्योंकि खोटी है। हदीस किसा तो तकरीबन आजकल खत्म हो ही गई, जबकि हमारे बड़े बड़े मराजी अपने घर के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हदीसे के साथ। मगर दुआओं का रवाज है अभी तक दारुसलाम में, तो दुआए अदीला भी आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी होंगे। दुआए अदीला क्या है? एक दुआ नहीं, अ ग्रुप ऑफ दुआस, बहुत सारी दुआएं हैं, उनको मिला के दुआए अदीला कहते हैं। दुआए अदीला कहते ही उसे कि मरने से पहले इंसान का ईमान खत्म ना हो जाए, शैतान आपका ईमान छीन के ना ले जाए, सड़कों और बाजारों में मगिंग करने वाले और हाथ से पर्स लेके छीनने वाले घूमते हैं, उससे बड़ा शैतान मौजूद। दुआए अदीला इसलिए पढ़ी जाती है कि प्रोटेक्ट किया जाए अपने ईमान को। अब वो छोटी दुआए अदीला हो, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुकल्लिब अल-कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनी, शॉर्टेस्ट दुआए अदीला। और या वो बहुत बड़ी दुआए अदीला हो जो एवरी शबे जुमा लोग पढ़ते हैं। आज कंप्यूटर सिक्योरिटी डे के हवाले से फिर ये याद दिलाते हुए, ये ईमान की सिक्योरिटी बनती है दुआए अदीला। बट दुनिया की कोई दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं जब तक के साथ में आप एफर्ट्स ना करें। रोजी का तो अल्लाह ने वादा लिया है, रोजी नहीं मिलेगी। दुआ करते रहिए, सूरह वाकया पढ़ते रहिए, ज़ियारत वारिसा रोजी की नियत से पढ़ते रहिए। रिस्क की बेहतरीन दुआ है तस्बीह ज़हरा। अल्लाह के रसूल ने यह दुआ अपनी बेटी को उसी वक्त टीश की थी जब उन्होंने जाके अपने घर के हालात की जरा सी कंप्लेन की। उसे कंप्लेन तो नहीं कहेंगे लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास कि वजाहत करूं, तो पैगंबर ने यह तस्बीह ज़हरा बताई ना कि वो घर के जो हालात हैं और माली परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर एफर्ट्स, सेहत नहीं मिलेगी चाहे कितनी ही दुआएं क्यों ना पढ़ लें। अम्मा युजीब से लेके सूरह फातिहा तक एफर्ट्स। और यही एक जुमला और सुन लीजिए और मैं कल रात के टॉपिक से कनेक्ट हो जाऊं। इसी तरह से आप चीख चीख के, पुकार पुकार के, तड़प तड़प के कहते रहे अल अजल अल अजल अल अजल अजल अल्लाह अजल अल्लाह, ये दुआ है ना एफर्ट्स का। इसके साथ कोशिश क्या है हमारी? जॉब के लिए आप दुआ भी करते हैं एफर्ट्स, इलाज के लिए आप दुआ भी करते हैं कोशिश भी, औलाद के लिए दुआ भी करते हैं कोशिश भी, इमाम जमाना के लिए खाली दुआ है, कोशिश कहां है? तभी तो उस इमाम ने जिसका जिक्र कल रात को इसलिए हुआ कि उनकी शहादत की रात थी, एक रिवायत पर उनकी एक हदीस ये भी है कि आठ आदमी ऐसे हैं जब अल्लाह से दुआ करते हैं वो दुआ नहीं करते हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं अल्लाह का। और उनमें एक वो भी है जो इमाम जमाना के लिए दुआ कर रहा है, कोशिश कोई नहीं कर रहा, ये अल्लाह का मजाक उड़ा रहा है एक तरह से। तो अब ये एक जुमला कहकर आगे इसलिए बढ़ता हूं कि इमाम जमाना पे हमारी एक कोई मजलिस होगी, आज नहीं जो रिमेनिंग टू मजालिस। आज तो बात ये करना कि ईमान बचाना, तो इसके लिए कोशिश, और वो कोशिश क्या, ये जो हम करबला जियारत के लिए जाते हैं ना, ये खाली एक हॉलीडे ट्रिप ना समझिए, एक एंटरटेनमेंट का सफर ना समझिए, लोगों की देखा देखी कि सब जा रहे हैं तो हम भी जाएं, ये नहीं होना चाहिए। जियारत का अपना एक मवद्दत अहले बैत की जो ड्यूटी है जियारत के जरिए वो पूरी होती है, और जियारत वो चीज है जो हमारे और आपके ईमान को बचाने वाली है। यही वजह है कि 1300 साल की जो करबला के बाद की हिस्ट्री है, हमेशा दुश्मनान अहले बैत और इस्लाम ने जियारत के ऊपर अटैक किया। अब आजकल हालात बहुत अच्छे हैं और अल्लाह करे ऐसे ही हालात रहे, लेकिन इससे पहले भी जियारत के लिए अच्छे हालात, फिर सद्दाम जैसा कोई आ जाता था। एक अकेला सद्दाम को थोड़ी गुजरा है तारीख, मुतवक्किल से लेकर सद्दाम तक कितने ऐसे गुजरे जिन्होंने बाकी जो जुल्म किए तो किए। इमाम मजलूम की जियारत पे सबसे पहले पाबंदी लगाना चाहिए, और रीजन यही है कि इमाम हुसैन की कब्र, जरी, रौजा, आज रौजा, आज जरी, जब करबला का वाकया हुआ उसके बाद ना रौजा था ना जरी थी, सिर्फ एक कब्र थी, और फिर उसके ऊपर एक दरख्त उग गया सिदरा बेरी का, तो हारून ने उसे कटवा दिया। आप ये सुनते रहते हैं यहां मजलिसों में भी, करबला के अंदर के लेक्चर्स में भी, मगर वो टूटी हुई कब्र से लेके आज के रोजे तक, इमाम हुसैन का रोजा साहिबे ईमान को एक ऐसी इनर्जी, स्पिरिचुअल इनर्जी देता, एक ऐसी ताकत देता कि ईमान पे अटैक करने वाले को भागना पड़ता है। वो जियारत से इसलिए रोक रहा, सुलेमान पहले आदमी हैं जिन्होंने करबला के फौरन बाद या लसारात इल हुसैन का नारा लगाया, हमें हुसैन के खून का इंतकाम लेना, सुलेमान, सुलेमान खज़ाई। लेकिन पहले गए थे करबला, ये करबला के वाकये की सिर्फ 5 साल बाद की बात है, टूटी हुई कब्र जलते सूरज के नीचे, जो आज दुश्मनान इस्लाम वहाबियों ने जन्नतुल बकी में अम्मा और शहजादी के कब्र के साथ किया। उस वक्त तो कब्र बनी, कब्र ही थी, रोजा नहीं बना था, लेकिन वहीं जाके तो रोते रोते कसम खाई थी आका हुसैन से। मुख्तार, किसी ने मुझसे कहा था कि मौलाना मुख्तार पे भी कुछ बात करें, लेकिन मुख्तार के बारे में दो मसले। नंबर एक, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर इस पर मैं बात करता तो पूरा अशरा ज़ैनबिया खाली मुख्तारनामा बन जाता, और यकीनन एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, लेकिन मैसेज उसमें जरा कम, जो उसका बॉटम लाइन का मैसेज है वो हमारी मजलिसों में आ रहा कि मुख्तार की स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिल रहा। और एक तो ये रीजन के बहुत लेंथी सब्जेक्ट, और दूसरा इसलिए कि जब उसे ईरान में मुख्तार के हालात पर वो सीरियल बनी बहुत डिटेल के साथ, तो अब इतनी जरूरत नहीं। मगर मुख्तार हो और मुख्तार का लफ्ज आ गया तो एक जुमला कह के मैं अपने असल मौजू को आगे बढ़ाता हूं। कल मैंने कहा था कि रिसालत हो के इमामत, वो किसी की मोहताज नहीं है, सिर्फ अल्लाह की, मगर फिर भी लोगों से कहते हैं हमारी हेल्प करो, हमारे साथ कोऑपरेशन करो। एक दो वाकयात में पढ़ रहा था, फिर हमारा सब्जेक्ट 8वें इमाम की शहादत की वजह से चेंज हो गए। जरूरत नहीं है इमाम को, मगर फिर भी कहते हैं कि हमारी हेल्प करो, जिसको मैंने आखिर में एक जुमले पे कहा था कि आका हुसैन जैसा आलमिन नासिरिन यंसुरुना की आवाज बुलंद कर रहा। कौन आका हुसैन? जो बहुत से लोगों को रास्ते में वापस कर चुके थे, मगर फिर भी हेल्प मांग रहे हैं। क्योंकि इमाम जो कल की मजलिस में यह बात भी आई थी, अकेले काम कर सकता है, लेकिन इस्लाम अकेला काम पसंद ही नहीं करता, सबको इन्वॉल्व करके चल। आका सज्जाद अकेले भी खुतबा दे सकते थे, पूरी मस्जिद को इन्वॉल्व किया। तो आप जब इमाम पूरे मजमे को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता, तो फिर अपने मुख्तलिफ नायब बना देता, फुला काम के लिए ये मेरा नायब, फुला काम के लिए ये मेरा नायब, जरूरत भी नहीं। मगर ये बताने के लिए कि इस्लाम सिस्टम के जरिए काम करने का हुक्म देता, हर चीज सिस्टम के जरिए होनी चाहिए। चौथे इमाम ने कर्बला के वाकये का पहला रिवेंज अपने चचा मोहम्मद हनफिया के हवाले कर दिया। चचा मोहम्मद हनफिया, ये आपका डिपार्टमेंट, इसमें आप मेरी तरफ से इख्तियार रखते हैं। जो असली इंतकाम है, जो ईद उज जहरा बनेगी असली ईद, जो जमाने का इमाम आएगा, वो तो चौथे इमाम ही की एक और हदीस है। मगर चौथे इमाम के ये दो फरमान, इमाम जमाना के लिए चौथे इमाम ने खुद अपनी ड्यूटी संभाली, वो असली इंतकाम है, वो एक्चुअल रिवेंज। और मुख्तार, जब उन्होंने कहा कि मौला मैं एज ए मोमिन अपनी ड्यूटी अंजाम देना चाहता हूं, इमाम चौथे इमाम ने यस भी नहीं कहा, नो भी नहीं कहा, कहा कि जाओ मोहम्मद हनफिया के पास, ये इख्तियार और अथॉरिटी हमने उनको दी। मोहम्मद हनफिया चौथे इमाम के नायब बनकर मुख्तार के जिहाद को इंडोर्स कर रहे हैं। और जब कभी भी दुश्मनों को मुख्तार पर प्रेशर बढ़ाना होता था, मोहम्मद हनफिया को वह कैद कर लेते थे। आज भी जो मक्के के अंदर जन्नतुल माला का कब्रिस्तान है, उसके करीब ही वो पहाड़ था कि जहां मोहम्मद हनफिया इन जालिमों से बच के गार में पनाह लेने गए और ये वहां तक पहुंच गए, जालिम ऐन वक्त पे मुख्तार की फौज आ गई, मुख्तार कूफे में, वाकया मक्के का। मगर मसाला ये था कि हरेक को पता कि मुख्तार को अथॉरिटी मोहम्मद हनफिया से मिली। ये बहुत अहम अहम जुमले हैं उस मजलिस के लिए जिसमें इमाम जमाना का जिक्र आएगा, या कल या परसों, आखिरी दो में से कोई है। तो अब चौथा इमाम सारे काम खुद कर सकता, मगर अपने नायब बना दी। और एक बात ऐसी कह दूं कि जो पूरी एक घंटे की मजलिस अभी लंदन में पढ़ के आ रहा हूं, वो यहां का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। आजादारी के प्रमोशन के हवाले से चौथे इमाम ने अपनी फूफी जैनब कुबरा को अपना नायब बनाया था, मुख्तार के हवाले से अपने चचा को, और आजादारी के प्रमोशन के हवाले से जैनब कुबरा को अपना नायब बनाया था। फूफी अम्मा, मेरी इमामत की ड्यूटीज बहुत है, अब ये मेरी वर्डिंग है, चुनाचे मैं मदीना और मक्के से बाहर नहीं जा सकता हूं। असल में तो इमाम, चौथे इमाम इमाम हैं, असल ड्यूटी तो इमामत की है, कहा मैं नहीं जा सकता हूं, और आजादारी को और शहर में पहुंचाना, ये काम मैं आपके सुपुर्द करता हूं। शहजादी जैनब के इतने सारे रोजे दुनिया में क्यों मशहूर है? एक जैनबिया में है, दुश्मनान अहले बैत भी उसको इतना मानते हैं कि आईसिस या दाइश ने अपने एजेंडे में टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा रखा है जैनबिया के रोजे को तोड़ देना, क्योंकि ये कुफर का और शिर्क का अड्डा है, ये उनकी वर्डिंग है, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट उनका एजेंडा, और हिडन एजेंडा नहीं। एक तो होता है ना कि पब्लिक के सामने कुछ कहें, दिल में कुछ, खुल्लम खुल्लम जैनबिया। मगर शहजादी जैनब की एक कब्र काहिरा में भी है, और आगा मोहसिनुल हकीम की तकलीद करने वालों को मालूम है कि आगा हकीम काहिरा की कब्र को कितनी अहमियत देते। शहजादी की कब्र जन्नतुल बकी में भी, बल्कि बहुत से उलमा कहते हैं कि जन्नतुल बकी में जो फातिमा जहरा की कब्र मशहूर हो गई है, वो जैनब कुबरा की कब्र। शहजादी की कब्र अस्कंदरिया में भी है, शहजादी की कब्र लबनान और सीरिया के बॉर्डर पर भी है, बहुत सारी कब्रें, रोजे, खाली कब्र नहीं, रोजे। अफगानिस्तान में जो हालात हुए, उससे बहुत सारे शियों को भी पहली मर्तबा पता चला कि अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में मौला का एक बड़ा शानदार और प्रॉपर रोजा ऐसा ही है जैसा नजफ में। जनाबे जैनब के भी ऐसे कितने रोजे दुनिया में हैं, क्यों? वो आजादारी को लेकर इन सारी शहरों में गई थी। अब ये मौजू इस वक्त आज की मजलिस में शहजादी जैनब नहीं, वरना मैंने कहा ना कि इसी एक जुमले को मैंने एक घंटे की मजलिस में डिटेल के साथ बताया, उसको छोड़ दीजिए। बात यह है कि चौथा इमाम, और हर इमाम, खाली चौथा नहीं, हर इमाम सारे काम अकेले कर सकता है, लेकिन पूरा एक सिस्टम बनाना है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, हर काम इमाम करके नहीं देंगे। चुनाचे अपने नायब और नुमाइंदे बनाते हैं, खाली खुम्स कलेक्शन के लिए नहीं, यह इंतकाम करबला के लिए मोहम्मद हनफिया, यह हर शहर में आजादारी लेने के लिए मेरी वोटी जैनब कुबरा, और इसी तरह से इमाम जमाना को भी एक सिस्टम चाहिए। यह उस सवाल का जवाब है जो मजलिस के बीच में मैंने आपसे किया था कि खाली अलजल की दुआ नहीं, एफर्ट्स किया, एफर्ट से आपका सिस्टम, जब इमाम आएंगे दुनिया की सारी ताकतों से लड़ेंगे, तो उस वक्त इमाम को बेहतरीन अकाउंटेंट चाहिए, बेहतरीन आर्किटेक्ट चाहिए, बेहतरीन इंजीनियर चाहिए, बेहतरीन डॉक्टर चाहिए, आईटी के बेहतरीन माहिर चाहिए, एक सिस्टम इमाम को चाहिए। और जब तक कि ये एफर्ट्स हमारी कौम की नहीं होगी, थोड़े से डॉलर कमाए और घर जाके सो गए, उस वक्त तक अलाजल अलाजल की दुआ का फायदा भी कोई नहीं निकलेगा। मगर थोड़ी सी ये बात आज आ ही गई, तो बाकी बात कल या परसों आई। मैं अपने असल मौजू पे आ जाऊं ताकि बात एक सीक्वेंस में आगे बढ़े, कि दुनिया की तारीख में, हिस्ट्री में, आदम से लेकर कयामत तक सबसे खतरनाक जमाना जब कंप्यूटर सिक्योरिटी डे है आज 30 नवंबर, ईमान की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट जमाना, आखिरी जमाना, सबसे ज्यादा ईमान इस वक्त लोगों के खत्म होंगे, तो बहुत ज्यादा ख्याल करना है करबला इसके लिए, करबला की सही जियारत। चुनाचे बाज हदीसों में एक लफ्ज है, जो करबला की जियारत करता है उस पर जन्नत वाजिब, एक लफ्ज, जो करबला की जियारत करता है बराअतु मिनन नार, जो मैंने शबे जुमा हाजी अली बगदादी का वाकया पढ़ा, अजाब खुदा से वो महफूज हो गए। मगर बाज हदीसों में आरिफन बेहक ही जियारत करे हक़े हुसैन की मारिफत रखते हुए, बगैर मारिफत की जियारत है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, मारिफत। और अगर हक़े हुसैन की मारिफत हो जाए तो जो जवाब इमाम जमाना ने उस दौर के मर्जी अमीर अल्लाम, नहीं अमीर अल्लाम तो रावी, मुकद्दस अर्दबेली को दिया था, मुकद्दस हमारी तारीख के इतने अजीम मर्जे और इतने पुआस मर्जे कि हमारा कोई मर्जे इनका नाम नहीं लेता। अब ये मर्जे हैं तो इनके फतवे डिस्कस होते हैं हौजे में, लेकिन अगर आगे कोई इनके किसी फतवे पे डिस्कस करे, ये नहीं कहेंगे कि अहमद अर्दबेली ने कहा, मुकद्दस ने कहा, खाली एक लफ्ज, मुकद्दस मीन्स 1400 साल की तारीख में एक ही पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको मुकद्दस कहा गया। लेकिन जब ये इमाम जमाना से मिले थे, इमाम ने इनसे क्या कहा था, और वो जुमला भी इनके अपने उस शागिर्द ने कोट किया, अमीर अल्लाम जो इनके बाद मर्जे बने, यूजुअली मर्जे के फौरन बाद उसका स्टूडेंट मर्जे नहीं बनता, जनरेशन गैप होता है, कुछ वक्त लगता। हजरत इमाम खुमैनी के बाद रहबर आयतुल्लाह खामेनाई की मर्जियत, और आयतुल्लाह खुई के फौरन बाद आयतुल्लाह सीसानी की मर्जियत, ऐसी एग्जाम्पल हिस्ट्री में बहुत कम है। स्टूडेंट मर्जी बनते हैं, लेकिन असल मर्जी और उसको स्टूडेंट के बीच में तीन चार मिडिल एज वाले भी मर्जी होते हैं। मगर ये अमीर अल्लाम इतने बड़े आलिम नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा सिवाय उन लोगों के जिनको ये वाकया मालूम है। उन्होंने कोट किया कि मेरे उस्ताद ने यह कहा कि इमाम ने उनसे जुमला कहा कि जहां हमें बुलाने वाला बुलाता है उसे हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हम उसके पास पहुंच जाते हैं। मगर آج موضوع امام زمانہ نہیں، آج موضوع دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو کمپیوٹر کی سیکیورٹی کے حوالے سے ابھی ابھی میرے دماغ میں آ گئی تھی، یعنی ایمان کو بچانا. موضوع ہے کہ زیارت ایمان بچاتی ہے، لیکن کچھ لوگ کربلا جا کے خالی ہاتھ آتے ہیں، عارفاً بحق ہی اگر شرط پوری نہیں ہو رہی، اور کچھ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں کربلا چل کے وہاں آ جاتی ہے. اب کربلا کہاں کہاں کس کے پاس آ سکتی؟ یہ تین چار دن میں نے جملہ بھی کہا اور ایک تو اس میں سے بات بتا بھی دی، جہاں جہاں امام مظلوم کی مجلس ہو. ایک لفظ میں نے کہا تھا جو کچھ لوگوں نے سن لیا، زیادہ تر لوگوں نے سنا ہی نہیں. میں نے کہا تھا شرط یہ ہے کہ لائیو مجلس ہو، گھر میں مجلس ہو، آقا حسین آئیں گے لائیو. اس لیے کہ شریعت میں یہ جو ریکارڈنگ آج کل چلتی، اس کو غلط یا برا نہیں کہا گیا، اس کے اپنے بینیفٹ، لیکن جو اصل بینیفٹ ہے وہ لائیو. اور چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، قرآن کی چار آیتوں کو پڑھیں گے یا سنیں گے تو سجدہ واجب ہے، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، مگر کیا شرط ہے؟ کہ لائیو سنیں. اگر ٹیلی ویژن پر، اگر ریڈیو پر، اگر کسی چینل پہ قرآن کی آیت آپ نے سنی اور وہ لائیو آ رہی ہے مثلا مکے سے، یا اس وقت قاری اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آیت آپ نے سنی، تو آپ نے سجدہ واجب. اور اگر کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے، آج کل تو بہت سے لوگوں کے اسمارٹ فون میں پورا قرآن ڈاؤن لوڈ ہوتا، اب اگر ریکارڈنگ میں آپ نے قرآن کی آیت سنی سجدے والی بھی، سجدہ واجب نہیں. کر لیں تو اچھا ہے لیکن واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا حکم لائیو کا حکم ہے. اب یہی میں مجلس کے حوالے سے جملہ اس دن میں نے کہا تھا، لیکن 1% کے علاوہ کسی نے سنا بھی نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا. لائیو لائیو مجلس، اس بچے کو سامنے بٹھائیں اپنے گھر میں، دو نوحے کے شعر اس سے سن لیں، ہو گئی لائیو مجلس. ہاں بچوں کو اس وقت بٹھائیں گے جب آپ بچوں کو مجلس میں لائیں گے، خیر وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. دوسری چیز، اب وہی مجلس کو وہیں پہ روک کے نہیں رکھنا ہے جہاں دو دن پہلے رکی ہوئی تھی، آگے بڑھنا. دوسری چیز، یہ واقعہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ماہ رمضان میں شاید پڑھا، شاید، یاد نہیں. بہرحال میرے آج کے ٹاپک سے اتنا یہ ریلیٹڈ واقعہ کہ اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں لیکن بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں. ہماری تاریخ کے بہت اہم مراجع میں سے ایک ہیں آغائے بروج جردی، بلکہ جہاں تک میری معلومات ہیں، میں بھی آئی رہا ہوں، کہ ایسٹ افریقہ کے خوجوں میں تقلید زیادہ آغائے بروج جردی کے زمانے سے شروع ہوئی. مل جاتے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی جنہوں نے آغائے ابو الحسن اصفہانی کی بھی تقلید کی ہے، اور شاید بہت کم آغائے نائنی کے بھی مقلد مل جائیں، لیکن بڑے پیمانے پہ تقلید آغائے بروج جردی سے شروع ہوئی. اللہ کرے کہ یہ جملہ یہیں تک رہے، کیونکہ آج کل ویسٹرن میڈیا ایک عجیب جملہ استعمال کر رہا، آغائے سیستانی از دا لاسٹ مرجی آف شیعت، کہا ان کے بعد دیکھنا تقلید اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، مرجعیت ختم ہو جائے گی. اور پھر پورے پورے آرٹیکل ٹورنٹو اسٹار میں یا گلوب میں میں نے خود پڑھے، لاسٹ مرجی آف دی شیعت آغائے سیستانی. اور جو اس وقت ہماری قوم مرجعیت کے حوالے سے ڈفرینسز پیدا ہو چکے ہیں، تو کچھ سائن بھی سامنے آ رہے ہیں کہ شاید خدا آغائے سیستانی کو اور آغائے خامنائی کو طول عمر دے، ان کے بعد شاید حالات بہت خراب ہو جائے. مگر یہ آج کا موضوع نہیں، جب امام پہ بات کروں گا شاید تھوڑی سی یہ بات آ جائے. ابھی صرف ایک بات، آغائے بروج جردی بہت اسٹرانگ پرسنالٹی، بہت بڑے مرجی، ایران کے ریولیشن کا ایک امام خمینی کو چھوڑ کر جتنے علماء کا رول ہے وہ سب آغائے بروج جردی کے اسٹوڈنٹس ہیں. امام خمینی، ان سے پہلے والے مرجی آغائے عبد الحریم عبد الکریم حائری کے اسٹوڈنٹ، उनका भी एक वाकया आने वाला है, कर्बला कैसे घर में आती, पहले ये सुन ले। तो आगा ब्रोजर्दी का वाकया है, और पहले जमाने में, पहले से मेरी मुराद 500 साल पहले नहीं, 40 साल पहले, 30 साल पहले, महाराजे उनके घर का दरवाजा एक टाइम पे खुला रहता था, एक टाइम फिक्स था कि जिसको मुलाकात करना है मुलाकात कर, ना कोई अपॉइंटमेंट, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई और ऐसे प्रॉब्लम। जब आपका दिल चाह जियारत के लिए, आप अगर 10 दिन नजफ में हैं या 5 दिन, जब दिल चाह चले जाइए। चुनाचे आपके कितने बुजुर्गों ने आगा खुई की जियारत इसी तरह की, उससे पहले आगा मोहसिन हकीम की जियारत इसी तरह की। तो ये एक सिस्टम था। आगा ब्रोजर्दी के एक बहुत ही करीबी शागिर्द हुसैन अंसारियान, उस्ताद हुसैन अंसारियान, इनकी वेबसाइट भी है, इंग्लिश में भी है, ये पूरी स्टोरी डिटेल से वहां पे मौजूद भी है। वो फरमाते हैं कि जो मेरा टीचर था वो बता रहा, अब इनका टीचर हुज्जतुल इस्लाम और आयतुल्लाह के लेवल का आलिम है, या तो हुज्जतुल इस्लाम का लास्ट स्टेज या आयतुल्लाह का बिल्कुल शुरू का स्टेज। सारे आयतुल्लाह भी बराबर नहीं होते, सारे आयतुल्लाह उज़्मा भी बराबर नहीं। तो खैर ये तो बहुत लंबी मजलिस हो जाएगी, इतना वक्त कहां। मेरे उस्ताद कहते हैं कि मैं आगा ब्रोजर्दी के सिटिंग में, जो उनका 2 घंटे का या 3 घंटे का या 1 घंटे का आम लोगों से मुलाकात का टाइम रेगुलर जाता था, महाराजे के पास बैठने के बेनिफिट भी बहुत है और बहुत से नए नए मसले सुनने को मिल जाते हैं। और फिर ये तो आगा ब्रोजर्दी की टीम में शामिल थे। वो कहते हैं आगा उस्ताद हुसैन अंसारियान ईरान के इस वक्त के बहुत बड़े आलिम, अपने उस्ताद की बात, ये मेरे उस्ताद कहते हैं कि एक दिन मैं इसी तरह जा रहा था, यानी आगा ब्रोजर्दी के ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में, मैंने देखा कि वो एक जाहिर मुलाकात करके आ रहा, यही होता था कि खुला हुआ हो घर, 5 जा रहे हैं तो 10 आ रहे हैं, तो 15 जा रहे हैं तो 25 वापिस आ रहे हैं। मगर ये आदमी बड़ी अजीब हालत में, बहुत ही इन डिसेंट किस्म की क्लोथिंग इसकी है। पहला जमाने में तो ये जो शॉर्ट पहन के आपके बच्चे गर्मियों में घूमते रहते, कंसेप्ट नहीं था पहले जमाने से, मतलब 50 साल पहले लोग चले जाते हैं इमाम के जमाने में, नहीं, वैल्यूज बहुत चेंज हो गई। मीडिया ने खाली औरतों ही को नहीं, मर्दों को भी बहुत नंगा कर दिया, अखलाकियात खत्म हो गई, बड़ों के रिस्पेक्ट किसे कहते हैं ये लोग भूल गए, खासतौर पर ये बच्चे। लेकिन इस तरह से अगर इस स्टाइल में मस्जिद पढ़ता रहा तो आज तो रिकॉर्ड टूटेगा 3 घंटे का, जो मैं आज ब्रेक नहीं करना चाहता, वरना मैं खुद ब्रेक हो जाऊंगा या ब्रेक कर दिया जाऊंगा। खैर, तो वापिस आइए असल जुमले पर, खाली शर्ट पहने हुए है, एक किस्म का बरमूदा शॉर्ट जो होते हैं उस टाइप का शॉर्ट पहने हुए और बस, आम लोगों के सामने इस ड्रेस में कोई नहीं जाता कहां मर्जी। आपने देखा होगा ना कितनी ही ऐसी लेडीज जो यूरोप और अमेरिका में मोमिनात, कितने बेहुदा लिबास हैं लेकिन मर्जी से मिलने जाती हैं तो कम से कम सर पे चादर होती है, अच्छी बात है, साइन ऑफ रिस्पेक्ट। ये आदमी अजीब हालत में, तब चले गए आ गए अंसारियान के उस्ताद, जाके बैठे। अब जैसा मैंने कहा ये टीम है, बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, आगा ब्रोजर्दी की एक टीम है, उनके राइट लेफ्ट बैठते थे, ये उनके अपने साथी से कहने लगे ये कौन आदमी था, ऐसे क्लोथिंग में यहां पे आया है और तुम में से किसी ने इसको रोका भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं वाकया कुछ और, ये अभी थोड़ी देर पहले एक सूटकेस लेके आया और आगा ब्रोजर्दी के सामने वो सूटकेस खोल दिया, वो सारा करेंसी नोट से भरा हुआ पूरा सूटकेस। मेंबर है इसलिए मैं डरते डरते एक लफ्ज कह रहा हूं, किसी ने मुझसे कहा कि मौलाना इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पेटी या खोखा, अब मुझे नहीं पता कि लफ्ज कहां से आया, कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूं सूटकेस करेंसी नोट से भरा हुआ। और आधे सूटकेस में है गोल्ड, और आगा के सामने रखा और कहा कि मैं तेहरान का, ये शाहे ईरान का वो जमाना जब इमाम खुमैनी ने इनकलाब की आवाज बुलंद नहीं की थी, यानी इतनी खराबियां थी ये वाली खराबियां जिसकी वजह से इमाम खुमैनी को इस्लामी इनकलाब का सिलसिला शुरू करना पड़ा। तो बहुत ही अल्ट्रा मोड कहा, मैं वहां पे शराब खाने चलाता हूं, शराब बनाने की फैक्ट्री है, ड्रग में इन्वॉल्व हूं, कैसीनो है मेरे, बाकी चीजें दारुसलाम के लोग नहीं समझेंगे, कराची के लोग समझेंगे, कब्जा माफिया है, चाइना कटिंग है, जमीनों पे कब्जा, लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा, लोगों के बिजनेस पे कब्जा। तेहरान का एक बहुत ही मशहूर मैं गुंडा था, अकेला नहीं पूरा एक मेरा गैंग था। बस एक बार मैंने तौबा कर, अब वो वाकया भी है लेकिन वो फिर मेरे आज के मौजू से हटकर, और जब तौबा की तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने एक मजलिस में कहा था, तौबा विदाउट नॉलेज कुछ नहीं, इल्म होना चाहिए। तो इस गुंडे बदमाश को इतना इल्म था, जो हमारे यहां बहुत से नमाज शब पढ़ने वाले मोमिनों को नहीं, कि तौबा किसे कहते। कहा कि तौबा कर ली तो तौबा ये नहीं है कि कल से ही सारे काम बंद, आज तक जितना कमाया और अर्न किया ये भी वापस करो, सारे शराब की फैक्ट्रियां बंद की, सारे कैसीनो बंद किए, सारी नाजायज प्रॉपर्टी वापस की, लेकिन जिसके ऑनर का पता ही नहीं, शराब बेची है किस किस के हाथ बेची, कैसे ढूंढने और उसको पहुंचाएं, तो फिर ये रकम कहां जाती है, मर्जे के पास। वो सारा मैंने बेचा, इवन अपना मकान बेच दिया क्योंकि हराम पैसे से बना, अपनी सवारी बेच दी, इतना पैसे वाला, इसकी तो गाड़ी भी मर्सिडीज से भी आगे की थी, फरेरी वरेरी या क्या लम्बागानी वगैरह क्या, मुझसे तो नाम भी नहीं लिया जाता, सब बेच दिया मैंने, सब हराम पैसा, और ये सारे पैसे मैं लेके आपके पास आया और बस से आया हूं, जो जिंदगी में कभी बस पे नहीं बैठा, लेकिन ये क्या तौबा की है तो तौबा सच्ची करो ना, अल्लाह से मजाक तो ना करो, ये सब मैं लेके आया कि मुझे पता ये मर्जे का हक, हमारे मोमिनों को आज तक खुम्स के बारे में नहीं पता कि ये मर्जे का हक भी है कि नहीं। अब वो खुम्स तो छोड़ो, कहीं से तुम्हारे माल में हराम आ जाए वहां पहुंचाना। अब मैं ये लेके आया ताकि मेरी तौबा सही हो जाए। आगा बुरजर्दी ने सिर्फ एक सवाल किया, कहा देख मैं खुद डिटेल में नहीं जाता लेकिन चूंकि तू सच्ची तौबा करना चाहता तो एक बात बता दे, ये जो ड्रेस तूने पहना ये हलाल पैसे का है कि ये भी हराम पैसे का है? कहा ये भी हराम पैसे का है? मेरे पास तो हलाल कुछ था ही नहीं। तो कहा अगर तौबा सच्ची करना है तो ये भी देना पड़ेगा। अब सच्ची तौबा थी, नाराज नहीं हुआ मर्जे पे कि मैं तो सूटकेस भर के आपके पास ला रहा हूं और आप मेरे पैंट और शर्ट भी उतरवा रहे हैं। हम तो समझते हैं ना कि हमने अल्लाह के रास्ते में इतनी चैरिटी की, अगर हम हज करने जाएं तो खाना काबा को आगे आकर हमारा इस्तकबाल करना चाहिए, हम क्यों जाएं उसके पास, मर्जे को उठ के हमें थैंक यू कहना चाहिए अगर हमने दौलत दुनिया में से खुमस के नाम पे उसको कुछ दे दिया। देते भी कम है, देते हैं तो उससे ज्यादा वापस लेने की फिक्र होती है, मगर मौजू कुछ और है। चुनाचे जैसे ही ये सुना आगा बुरजर्दी ने कहा क्योंकि तू सच्ची तौबा करना चाहता तो मेरी ड्यूटी है कि तुझे सही मसाला बताऊं। उसने एक मरतबा अपना ड्रेस भी उतार दी, सिर्फ जो अंडर गारमेंट होते हैं जो वैसे बहुत बुरे लगते हैं मर्जे के सामने और बुरे लगेंगे, लेकिन जब वाजिबात इन्वॉल्व हो जाए, आम दिनों में हज और उमरे का एहराम कितना बुरा लगता, हज में 20 लाख 30 लाख 3 मिलियन 4 मिलियन वही कपड़े पहन के घूमते, वो वाजिबात है, और ये कह के उसने ये लिबास भी दिया और वापस चला। आसमान को देखा खुदा बंदा मैंने अपनी ड्यूटी अंजाम दे दी, हराम माल मर्जे तक पहुंचा दिया। यही जुमला हमारी समझ में नहीं आता, हम आगे सवाल करते हैं फिर मर्जे क्या करता, कहां खर्च करता है खुमस, क्या इसका हिसाब किताब है, मर्जे के घर में जाता है तो उसके बच्चे या बच्चियां तो उसको इस्तेमाल नहीं करते, ये तुम्हारा मसला ही नहीं है, तुम्हें वहां तक पहुंचाना है, उसके आगे क्या होता है ये इमाम जाने जिन्होंने उसको नायब बनाया, ये तुम्हारा काम ही नहीं है। یہ غنڈہ بدماش شرابی جواری خدا بندہ میں نے اپنا کام کر دی جو میری ڈیوٹی تھی یہ کہہ کہ وہ باہر چل آغا نے اسے روکا کہا کہ واپس تو جا رہا تہران جائے گا کیسے واپسی کا کرایہ ہے کہا نہیں وہ تو میں بھول گئے آغا نے اسے واپسی کا کرایہ اپنی جیب سے دیا اور ایک رقم بہت چھوٹی سی مثلاً $100 کہا کہ اب جائے گا تو وہاں تیرے پاس کچھ نہیں بیوی ہے بچے ہیں کھانا بھی تو دینا ہے اس سے کوئی چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کر دے اب بات ختم اب خود آغا انصاریان کہتے ہیں خود آغا انصاریان ابھی تک اپنے استاد کا واقعہ سنا رہے تھے late 50s کا اب آغا انصاریان حوزے سے فارغ ہو گئے بہت بڑے عالم بن گئے اور late 70s میں تبلیغ شروع کر دی چنانچہ تہران بھی بلائے گئے جو کہ بہت ہی اچھی ان کی اسپیچ ہوتی ہے ایک ایک مجلس میں کتنے کتنے لوگ توبہ کر کے اٹھتے ہیں تو تہران میں بہت زیادہ پاپولر تھے وہاں گناہ بھی زیادہ تھے شاہ کے زمانے میں یہ شاہ کا بالکل آخری زمانہ تھا وہاں بلائے گئے لیکن جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تہران میں کتنا نیک اور مقدس آدمی رہتا کیا آج تک ہم نے نہیں دیکھا اور الگ الگ علاقوں کے لوگ ان کو شوق ہوا میں بھی تو اس مومن سے ملوں گئے اور کہا کہ اتنے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کس طرح کی کہ آپ اتنے نیک بن گئے وہ مسکرائے کہا کہ باقی لوگوں سے کہا باہر چلے گا کہا یہ میں کسی کو نہیں بتاتا کیونکہ اسلام میں اپنا عیب بھی چھپانے کا حکم ہے لیکن آپ کیونکہ اتنے بڑے عالم اور لوگوں کو بینیفٹ پہنچائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں مجھ سے زیادہ گناہگار غنڈا بدماش کوئی نہیں تھا تہران پھر میں نے ایک سچی توبہ کی جس کا یہ نتیجہ نکلا ان عالم آغا انصاریان کو یاد آ گیا میرے ٹیچر نے جو ایک واقعہ بتایا میں نے کہا وہی تو نہیں جن کا ڈریس آغا بروجردی نے اتارا تھا اور ان کو کرایہ بھی دیا تھا اور بزنس کے لیے $100 کہا کہ وہی اور آغا کا جو لون تھا میرے پاس واپس کیا بعد مگر اتنی برکت ہوئی کہ جو حرام سے میں کما رہا تھا اس سے زیادہ مجھے حلال سے مل رہا سارے حلال بزنس کہا لیکن آپ کا گھر تو ایسا نہیں گاڑی تو ایسی نہیں کہا یہ سارا میں نیکی کے مختلف کاموں میں خرچ کر دیتا ہوں پھر اپنے کچھ پروجیکٹ بتائے جن میں ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا لیکن اب ٹائم نہیں اور وہ ہمارے سبجیکٹ سے بھی اتنا متعلق نہیں محبت ہو گئی آغا انصاریان کو ایسی توبہ کرنے والا کہاں ملتا ہے ایسی سچی اور پکی توبہ کہ اپنی بیوی تک کو نیبر کے گھر میں بٹھا کے کم گئے تھے مکان ہی نہیں سواری ہی نہیں اور اللہ نے اتنی برکت بھی دی اللہ کا وعدہ اب رمضان چل رہا ہے لاسٹ شب جمعہ آ گئے جس کے نیکسٹ ڈے جمعے کی آخری نماز ہوتی ہے جمعۃ الوداع تو یہ شب جمعہ تھی لاسٹ شب جمعہ آف رمضان ان کا بیٹا آیا وہ جو غنڈے بدماش دو بھی تھا اور کہا کہ بابا کچھ دنوں سے طبیعت خراب ہے اب وہ آج آپ کو بلا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سے اور ملاقات کر لو کہا کہ ہاں ہاں آج تو شب جمعہ ہے اور لاسٹ شب جمعہ ہے رمضان کی ساری رات میری دعائیں اور اعمال اور زیارتیں صبح پھر دعائیں ندبہ وغیرہ جمعے کی نماز پڑھ کے آؤں گا رات انہوں نے عبادت میں گزاری رمضان میں ویسے ہی لوگ عبادت کرتے ہیں اور شب جمعہ ہو لاسٹ شب جمعہ ہو صبح کو دعائیں ندبہ وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوئے کہ بیٹا آ گیا اور کہا کہ بس یہ خبر دینے آیا ہوں کہ آج فجر کی نماز کے بعد میرے بابا کا انتقال ہو گیا دنیا سے چلے گئے گزر گئے انہوں نے جو ہر آدمی سوال کرتا آخری وقت میں کیا حالت ہے کہا کہ ہم تو ڈر رہے تھے کہ آخری وقت کی جو تکلیف ہوتی لیکن بابا تو اتنے آرام سے دنیا سے جا رہے تھے آنکھیں بند تھی ایک بار آنکھیں کھولی ہمیں دیکھا اور ہمیں دیکھ کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ آقا حسین میرا سلام لیجی ہم گھبرا گئے ہم نے کہا بابا یہ میں آپ کا بیٹا کھڑا ہوں میں آپ کی بیٹی کھڑی ہوں میں تمہاری بہن ہوں میں تمہاری ماں ہوں یا آپ کس کو سلام کر رہے کہا تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں مجھے لینے کے لیے آقا حسین آئے ہیں और कहा कि चलो मेरे साथ मैं तुझे ले जाऊंगा, उनको देख के मैंने सलाम किया। ये जुमला बाबा ने कहा आखिरी जुमला और दुनिया से चले गए। हुसैन लेने आए। करबला क्या है? करबला हुसैन का नाम। दुनिया जाती है हुसैन के पास और वहां भी आरिफन भी हक ही की शर्त है। चले भी गए तो पता नहीं हुसैन सलाम का जवाब दें कि मुंह फेर लें। और कहा ये आदमी है, हुसैन खुद चल के आए हैं कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। क्यों? सच्ची तौबा की। सच्ची तौबा एक ऐसी चीज है कि अगर आप करबला न भी गए, करबला चल के आपके पास आएगी, आका हुसैन आपके पास आएंगे। सच्ची तौबा। सच्ची तौबा किसे कहते? जो अभी आपने वाकये में भी सुना, सारा हराम वापस कीजिए, सारी कज़ा नमाजें पढ़िए, सच्ची तौबा। और सच्ची तौबा के लिए करबला से बेहतर मिसाल क्या? हुर कहां का था? करबला का। आज भी हुर का रोजा करबला में एक नुमाया शान रखता। करबला के सारे शहीद आका हुसैन के रोजे के अंदर, या एक आका अब्बास फुरात के किनारे हैं, या हुर इब्ने यजीद रियाही। आगाए बुरोजर्दी से ज्यादा आगाए मोहसिनुल हकीम अफ्रीकन खोजों के अंदर तकलीद हुई। हर नस्ल के बाद तकलीद बढ़ती जाती है ना, जैसे अवेयरनेस आती। आगाए मोहसिन हकीम के बेटे कहते हैं रजा हकीम, वो भी बेचारे शहीद किए गए, उनकी कब्र भी बाप के बराबर वहीं नजफ में मौला के बाबुल किबला के सामने जो एक गुंबद है ग्रीन कलर का, उसके नीचे कि मेरे बाबा जब बहुत बूढ़े हो गए थे, 91 की एज थी, 91, तो कहा कि एक बार मुझे करबला की जियारत और करा दो। माशाल्लाह 10 या 11 तो जवान बेटे थे, जिनमें से ऑलमोस्ट सब मुश्तहिद थे। 10 जवान बेटों का बाप, मुझे जियारत करा दो, हम लोग लेके गए। अब वो जमाना, सद्दाम भी कुछ नहीं कर सकता था। आगा हकीम इराक के बेताज बादशाह माने जाते थे। आका हुसैन की जियारत करके कहा मुझे हुर के रोजे पे जरूर ले जाना, ऐसा ना हो कि मेरा बुढ़ापा या कमजोरी देखकर तुम ये सोचो कि भाई अहम अहम जियारतें करा दें। हुर के रोजे पे जरूर ले जाना। वहां गए खुद शहीद आयतुल्लाह रजा अल हकीम, फर्जंद आयतुल्लाह अल उज़्मा आगाए मोहसिन हकीम कहते हैं कि हम बाबा को लेके अंदर दाखिल हुए, जरी के करीब पहुंचे, बाबा ने एक जुमला कहा, हमसे नहीं हुर से, आए हुर मैं उम्र में भी तुझसे बड़ा हूं। हुर कितना था? 34। आगाए मोहसिन हकीम कितने? 91। एजेड आदमी का एक एहतराम होता, मैं इल्म में भी तुझसे ज्यादा हूं। आगाए हकीम मुश्तहिद नहीं है, मर्जे हैं, मुश्तहिद से भी बड़े। मैं खानदान में भी तुझसे बेहतर हूं, सैयद हैं, फातिमा के बेटे हैं। हुर ने भी आका हुसैन से कहा था ना, अगर किसी और ने मेरी मां का नाम लिया होता तो मैं वैसा ही जवाब देता। आपसे क्या कहूं, आपकी मां तो सैयदाए निसाए आलमीन है, खुद हुर मान रहा है। नसबे फातिमा, इल्म में तुझसे ज्यादा, उम्र में तुझसे ज्यादा, खानदान में तुझसे बेहतर। चुनाचे अगर मैं तेरी जरी के सामने बैठ जाऊं तो हरज नहीं है। छोटे खड़े होते हैं, बड़े बैठ जाते हैं। लेकिन कहा कि आए हुर तेरी ऐसी तौबा मैंने देखी कि मुझमें हिम्मत नहीं हो रही तेरी जरी के सामने बैठने की। ऐसी तौबा तूने की है कि दुनिया की सारी तौबा एक तरफ, तेरी तौबा एक तरफ। 91 ईयर्स का बूढ़ा मर्जे सैयद हसनी और हुर की कब्र के सामने, जरी के सामने कांप रहा है हुर के जलाल की वजह से। सच्ची तौबा। करबला आपके पास आएगी, मर्जियत आपके पास आएगी, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट तौबा। हुर की तौबा ऐसे ही, यही वजह है कि जब शाह इस्माइल सफवी ने यह सुना के बाद लोग हुर की बुराई करते हैं कि जी हुर जो है वो था तो हुसैन का दुश्मन, तो कहा कि हुर की कब्र खोलो। करबला के वाकये के 8 सेंचुरीज के बाद हुर कब्र में ताजा, बिल्कुल जैसे कोई बेडरूम में सो रहा है, सर पे वो रूमाल तक बंधा है जो फातिमा ज़हरा का रूमाल था आका हुसैन ने बांधा। शाह इस्माइल ने कहा ये तो बहुत बरकत वाला रूमाल, मैं अपनी कब्र में रखूंगा, जरा इसको खोलना। और रूमाल को खोला गया, उड़के जिस्म से खून दोबारा निकलने लगा। 900 साल के बाद भी जिंदा, तौबा सच्ची की। करबला आपके पास आती, मरजियत आपके पास आती। मगर दो बातें और बहुत अहम रह गई हैं, कल की मजलिस में आएगी, उसी में कुछ इमाम जमाना का जिक्र भी आ जाए। अलबत्ता ये जुमला जो मैंने कहा कि हुर अलग से दफन किए गए, तो आका अब्बास अलग से दफन है। वसीयत थी कि मौला मेरे लाशे को खेमों में न ले जाइए। और हुर इसलिए अलग से दफन है, उस वक्त हुर की फौज उमर एसार से रिक्वेस्ट करके ये लाशा ले गई। कल रात के जो मसाइब थे ना, उसी से मिलाते हुए आज बहुत मुख्तसर मसाइब पढ़ूंगा कि बाकी सारे वहीं दफन। हबीब इब्न मज़ाहिर अलग जरी है लेकिन है रौजे के अंदर। गंजे शहीदा अलग जरी है मगर है रौजे। ये सारी जो मैयतें आका सज्जाद ने दफन की, इसमें एक मैयत मुझको बहुत परेशान करती, और वो ये कि तारीखों में दो ऐसी बातें लिखी जो समझ में नहीं आती। जब तक रियाजुल कुस की एक हदीस पर आप तवज्जो न, अब खत्म बात। दो बातें लिखी, पहली बात ये लिखी कि आका ने सारे लाशे मैदान करबला एक ही जगह रखे, असगर का लाशा हाथ में लेकर एक टीले के पीछे गए थे और वहां कहीं कब्र बना के वापिस आए थे खाली हाथ। असगर की मैयत को दूसरे लाशों के साथ नहीं रखा गया, असगर को दफन करके आए। वाहिद करबला का ओनली शहीद है जिसे आका हुसैन ने खुद दफन किया। बाज़ उलमा कहते हैं शायद इसलिए कि बाद वाकया करबला अगर लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएं तो 6 महीने का असगर तो घोड़ों की ताकत वाले ना है। एक तो ये रिवायत है, ये भी है किताबों में, और एक ये कि शहजादा अली असगर इस वक्त अपने बाप के साथ उसी जरी में दफन है। हां जरी में भी इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं आका हुसैन के पांव की तरफ अली अकबर के बराबर अली असगर की कब्र है, कुछ कहते हैं कि नहीं आका हुसैन के सीने से मिला के असगर को दफन किया गया। किसने दफन किया? चौथे इमाम ने। दो रिवायतें, या आका हुसैन के सीने से ये बच्चा लेटा लिपटा हुआ और या फिर आका हुसैन के पांव थी लेकिन है इसी जरी के अंदर। तब एक सवाल पैदा होता है कि जब आका हुसैन हरमुला के तीन भाल से असगर का गला छिद गया तो टीले के पीछे ले जाके दफन किया, तो ये जरी में असगर कहां से आ गए? और अगर जरी में नहीं है और टीले के पीछे, वो कब्र कहां है? मकाम अली असगर तो आज भी आपको करबला में मिलेगा। आपके कितने साथी आज करबला पहुंच चुके होंगे जाहिर, और मकाम अली असगर की जियारत जहां हुसैन की गोद में असगर मारा गया, कब्रे अली असगर कहां? और दोनों रिवायतें हैं किताब में, टीले के पीछे जाके दफन किया, किसी को पता ना चला। जरी में ये अपने बाप के सीने पर है या अपने बाप के पांव थी? ये दो अलग अलग बातें कैसे जमा करें? अब आइए रियाजुल कुस की एक रिवायत सुनिए और खत्म बात। रियाजुल कुस की रिवायत यह है कि जब करबला का वाकया मुकम्मल हो गया, 11 मुहर्रम को लश्कर उमर साथ चलने लगा, तो अपने तो सारे लाशें उठा लिए। कल मैंने कहा था कूफा बहुत दूर नहीं है, ये सारे लाशें अपने साथ लेके कूफे गए। हुसैनी फौज के लाशें जमीन करबला पे पड़े, उमर साथ ने कहा इनके सर काटे जाए, हम नो के नैजा पर ये सर लगा के इस लश्कर के आगे ले चलेंगे। आगे आगे कटे सर जाएंगे, पीछे पीछे कैदियां होंगे, कैदी औरतें होंगी। अब ये सर काटे जाने लगे। अब्बास का सर नैजे पे बुलंद नहीं हुआ, वो तो खूली के घोड़े की गर्दन में बांध दिया गया। मगर जब सारे सर काट लिए, उमर साद ने एक बार कहा अरे इसमें असगर का सर तो नजर ही नहीं आ रहा। ہائے وہ ننا سر، ہائے وہ چھ مہینے کے بچے کا معصوم چہرے والا سر۔ عمر سعد نے کہا کہ وہ سر تو نظر نہیں آ رہا، اصغر کا لاشا کہاں ہے؟ سپاہیوں نے کہا اصغر کا لاشا بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اکبر کا لاشا ہے، وہ عباس کا لاشا وہاں ہے، وہ قاسم کا لاشا ہے، وہ خلا کا لاشا ہے، یہ ان کا لاشا، اصغر کا لاشا نظر بھی نہیں آ رہا۔ عمر سعد نے کہا اصغر کا لاشا کہاں گیا؟ کچھ سپاہیوں نے کہا کہ اے عمر سعد، ہاں یہ ہم نے دیکھا تھا، حسین اصغر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ٹیلے کے پیچھے گئے اور جب واپس آئے تو خالی ہاتھ آئے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہیں زمین میں دفن کر کے آ گئے۔ اب کیسے پتا چلے؟ وہاں کوئی نشان قبر تو حسین نے بنایا نہیں۔ کل میں نے پڑھا تھا کہ سردار بنی اسد پریشان ہے، لاشیں کیسے دفن کریں؟ آج آپ سن رہے ہیں کہ عمر سعد پریشان ہے، اصغر کا لاشا کہاں سے ملے کہ اس کا سر کاٹا جائے؟ ایک مرتبہ شمر نے کہا اے حاکم گھبرا نہیں، اصغر کا لاشا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ اور معلوم ہے کس طرح ڈھونڈ کے لایا؟ یہ ریاض القدس کی روایت ہے، ایک نیزہ ہاتھ میں لیا، وہ ٹیلے کے پیچھے گیا، بار بار وہ نیزہ زمین میں گاڑتا ہے، نیزہ نکالتا، خالی نیزہ نکلا، پھر آگے بڑھ کے یہ نیزہ زمین میں گاڑا، پھر خالی نیزہ نکلا، پھر یہ ہوا، لیکن ایک مرتبہ جو نیزے کو زمین میں گاڑا تو اس طرح سے نیزہ نکلا کہ ششماہ اصغر کا ننا سا لاشا نوک نیزہ پہ نظر آ رہا ہے۔ شمر کے ہاتھ میں نیزہ ہے، نیزے پہ اصغر کا ننا سا معلق جسم ہے۔ شمر نے یہ دیکھا، ایک بار لاشا لے کے عمر سعد کے پاس آیا اور کہا کہ لاشا میں نے ڈھونڈا ہے، اب سارا کام میں کروں گا۔ یہ کہہ کے زمین پہ بیٹھا، ایک ہاتھ میں اصغر کا لاشا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے جیب سے خنجر نکالا، یہ خنجر اصغر کے گلے پہ رکھا، اصغر کا گلا کٹا۔ یہ منظر در خیمہ پر سکینہ نے دیکھا، ہائے میرا چھوٹا بھائی، ہائے میرا ششما۔ ایک بار پلٹ کی آواز دی، پھوپھی زینب، اما رباب، کربلا میں ہر ایک مرتبہ مارا گیا، ہائے میرا اصغر دوبارہ مارا جا رہا ہے، تیر سے بھی شہید ہوا، خنجر سے۔ خدا بندہ، کربلا کے اس سب سے کم سن لیکن سب سے مظلوم شہزادہ علی اصغر کے مصائب کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان کی مدد فرما، صفحہ عذاب پہ بیٹھنے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خصوصاً مجلس کے شروع میں جن بیمار کے لیے امن یجیب المضطر اذا آہ ویکشف السوء کی تلاوت کی گئی، انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔